नमस्कार भारत, शुक्रवार 14 अक्टूबर, आज आपके साथ निखिल रंजन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की बाढ़, प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने की तीखी आलोचना।
This is not something that we can ignore. It's not something we can just sweep under the rug as just another disturbing footnote in a sad election.
तीन तलाक के मुद्दे पर विधि आयोग की प्रश्नावली को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने छलावा कहा। मुस्लिम जानकारों ने भी जताई आपत्ति। बौद्ध भिक्षुओं की धम्म यात्रा का आज कानपुर में होगा समापन। क्या बीजेपी दलितों को रिझाने में होगी कामयाब? मराठा योद्धा शिवाजी की जाति को लेकर जानकारों में छिड़ा है विवाद।
जो हायरार्की है हिंदू समाज की, उसके अंदर मराठा शूद्र ही माने जाते हैं, आजकल जिसको हम ओबीसी बोलते हैं।
अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया है। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में हुई एक रैली में ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। ट्रंप का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिलाएं झूठी हैं और उनकी प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन के साथ मीडिया की साठगांठ है। कई महिलाओं का कहना है कि ट्रंप ने उन्हें गलत तरीके से छुआ या जबरदस्ती उनका चुंबन लिया। अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने कहा है कि महिलाओं को छूने संबंधी ट्रंप की टिप्पणियां चौंकाने वाली और अपमानजनक हैं और इन क्रूर टिप्पणियों को छुपाया नहीं जा सकता। उत्तरी सीरिया में तुर्की की सीमा के नजदीक एक कार बम धमाके में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। चश्मदीदों का कहना है कि सुरक्षा नाके के पास मारे गए ज्यादातर लोग विद्रोही लड़ाके थे जो फ्री सीरियन आर्मी के सदस्य थे। ये विद्रोही समूह उत्तरी सीरिया में तुर्की की सेनाओं के साथ मिलकर इस्लामिक स्टेट के जिहादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। धमाके में घायल हुए कई लोगों को सीरिया के नजदीकी शहर एजाज में इलाज के लिए ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र के नवनियुक्त महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने चेतावनी दी है कि दुनिया एक खतरनाक समय से गुजर रही है। गुटरेश 1 जनवरी 2017 को बान की मून की जगह लेंगे। इस पद पर नियुक्ति की घोषणा के बाद अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने बीबीसी को बताया कि सीरिया में युद्ध खत्म कराना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बीबीसी की लायस डूसेट से बात करते हुए गुटरेश ने कहा,
The pressure not yet, the responsibility of course. We live unfortunately in a world in which power relations became unclear. You see,
अभी कोई दबाव नहीं, बल्कि निश्चित तौर पर जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूँ। हम दुर्भाग्य से ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ध्रुवीकरण शक्तिशाली राष्ट्र के बीच अंतर नहीं है। टकराव कई गुना बढ़े हैं और पुराने संघर्ष खत्म होते नहीं दिख रहे। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने संघर्षों को रोकने और उन्हें सुलझाने के लिए बहुत कम कोशिशें की हैं। यहां तक कि संघर्षरत हालातों में फंसे लोगों की मानवीय मदद भी सुनिश्चित नहीं की गई है। ये सिर्फ सीरिया के बारे में नहीं है, ये सीरिया के लोगों की तकलीफों के बारे में है, ये दुनिया में फैले आतंकवाद के बारे में है, इसलिए हम सब के लिए खतरनाक है। एंटोनियो गुटरेश के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति येमी ओसिनबाजो ने स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि अपहरण की गई 21 स्कूली लड़कियों को कैदियों की रिहाई के बदले में छोड़ा गया है। उन्होंने उन रिपोर्टों को गलत बताया और खारिज कर दिया जिनके मुताबिक स्कूली लड़कियों को छुड़ाने के लिए बोको हराम के 4 चरमपंथियों को रिहा किया गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं, निखिल रंजन। शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों से करते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को यौन उत्पीड़न के नए आरोपों से काफी झटका लगा है और इसे लेकर अमरीका में बहस तेज हो गई है। कई महिलाओं का कहना है कि ट्रंप ने उन्हें गलत तरीके से छुआ या जबरदस्ती उनका चुंबन लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया है। उधर अमरीका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने कहा है कि ट्रंप की टिप्पणियां चौंकाने वाली और अपमानजनक है और इन क्रूर टिप्पणियों को छुपाया नहीं जा सकता। पूरा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में हुई एक रैली में अपने समर्थकों से कहा कि उन पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। ट्रंप का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिलाएं निहायत झूठी हैं और उनकी प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन के साथ मीडिया की साठगांठ है। ट्रंप ने कहा कि ये दावे उन्हें बदनाम करने के लिए किए जा रहे हैं और ये डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के चुनावी अभियान का हिस्सा है।
These vicious claims about me of inappropriate conduct with women are totally and absolutely false.
महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार के ये दावे पूरी तरह से गलत हैं। ये मनगढ़ंत दावे हैं। ये विशुद्ध काल्पनिक और पूरी तरह से झूठ है। हमारे पास पर्याप्त सबूत है कि ये आरोप निराधार हैं और ये उचित तरीके से सही समय पर बहुत जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। दरअसल कई महिलाएं सामने आई हैं और उन्होंने ट्रंप पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार को दो महिलाओं ने बताया कि ट्रंप ने उन्हें गलत तरीके से छुआ या जबरदस्ती उनका चुंबन लिया। पीपुल्स मैगजीन की एक रिपोर्टर ने भी कहा कि जबरदस्ती उनका चुंबन लिया गया। ट्रंप का लीक हुआ एक वीडियो पिछले हफ्ते वाशिंगटन पोस्ट में दिखाई दिया था, जिसमें वे महिलाओं के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करते सुने जा सकते हैं। न्यू हैम्पशायर में हिलेरी क्लिंटन के समर्थन में एक चुनावी अभियान के दौरान मिशेल ओबामा ने कहा कि महिलाओं के बारे में ट्रंप की भद्दी टिप्पणियों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है। मिशेल ने कहा,
This is not something that we can ignore. It's not something we can just sweep under the rug as
इन टिप्पणियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम एक दुखी चुनावी मौसम में एक परेशान करने वाली बात मानकर किसी चीज के नीचे छुपा दें, क्योंकि ये सिर्फ एक भद्दी बातचीत नहीं थी। ये लॉकर रूम का एक मजाक नहीं था। ये एक ताकतवर व्यक्ति की स्वतंत्र रूप से खुलेआम यौन हिंसक व्यवहार की बातें करना है। ये वास्तव में महिलाओं को चूमने और छूने के बारे में अश्लील भाषा में बात करना है और हम चिंतित हैं, क्योंकि हम जब भी टीवी चालू कर रहे हैं इसे हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं। मिशेल ओबामा के शब्द। मिशेल ओबामा जब ये बातें कह रही थी तो उनका गला रुंध गया था। मिशेल ने कहा कि राजनेताओं को मानवीय शिष्टाचार के बुनियादी मानकों को पूरा करना चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने कहा कि दो महिलाओं की उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को छापने पर वे न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे, लेकिन अखबार का कहना है कि मानहानि का मुकदमा किसी की इज्जत को बचाने के लिए होता है। अखबार ने कहा है कि ट्रंप ने अपने लिए जो इज्जत कमाई है उस पर इस लेख से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा।
रिपोर्ट सुना रहे थे अमर शर्मा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक तरह से आरोपों की बाढ़ आ गई है। कुछ देर पहले मैंने वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से पूछा कि एक के बाद एक कर जिस तरह से आरोप सामने आ रहे हैं, आखिर हुआ क्या है?
जी हाँ, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी अभियान आप कह सकते हैं कि अपने अब तक के सबसे मुश्किल दौर में नजर आ रहा है। दूसरे डिबेट से ठीक पहले आए उस वीडियो के बाद जिसका जिक्र किया आपने, जिसमें ट्रंप महिलाओं के खिलाफ अश्लील बातें करते देखे और सुने गए हैं, ट्रंप ने पूरा जोर देकर कहा था कि उन्होंने बस ये बातें की हैं लेकिन कभी किसी महिला के साथ बदतमीजी या यौन शोषण नहीं किया है। लेकिन पिछले दो तीन दिनों में कई महिलाएं सामने आई हैं, किसी ने जबरदस्ती चूमे जाने तो किसी ने गलत तरीके से छुए जाने का आरोप लगाया है। मिस टीम यूएसए प्रतियोगिता में भाग ले चुकी एक महिला ने कहा कि ट्रंप महिलाओं के चेंजिंग रूम में आ गए थे, जहां कई लड़कियां अर्धनग्न अवस्था में थीं। एक ने आरोप लगाया है कि प्लेन के अंदर बगल की सीट पर बैठे ट्रंप ने उनके साथ अश्लील हरकतें की। ट्रंप और उनके कैंपेन ने इन आरोपों को झूठा, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है, और न्यूयॉर्क टाइम्स जिसने इनमें से कुछ आरोपों को छापा है उस अखबार को अदालत में ले जाने की धमकी दी है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने जवाब में चुनौती स्वीकार करते हुए कहा है कि अच्छा रहेगा क्योंकि अदालत ही उन्हें सीधा करेगी। कुल मिलाकर अमेरिकी चुनावी अभियान में इस तरह की अश्लील बातें, महिलाओं और पुरुषों के निजी अंगों का जिक्र शायद ही कभी हुआ हो।
ब्रजेश, आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम का ट्रंप के चुनावी अभियान पर क्या असर पड़ सकता है?
देखिए, चुनाव विश्लेषण और भविष्यवाणियों से जुड़ी एक जानी मानी वेबसाइट है 538.com, जो अब तक बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करती आई है। उनका कहना है कि अगर ट्रंप हारते हैं, जिसकी अभी फिलहाल काफी चांसेस लग रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह महिलाएं होंगी। इस देश में वोटरों में 51% महिलाएं हैं और वो अपने मतों का खासा इस्तेमाल करती हैं, और उस तबके में ट्रंप के बयानों को लेकर खासी नाराजगी है। और इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता इन बयानों की वजह से उनसे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हिलरी क्लिंटन अपनी ईमेल और विकीलीक्स की समस्याओं से जूझ रही हैं, लेकिन यौन शोषण का जो मामला है वो सब पर भारी पड़ रहा है। आज फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने एक जोरदार भाषण में ट्रंप का नाम लिए बगैर उनकी कड़ी और तीखी आलोचना की है और कहा है कि उनके जो बयान है उन्होंने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है। और मिशेल ओबामा की अपनी लोकप्रियता काफी है इस देश में इस वक्त, और उनका ये हमला ट्रंप के लिए और बड़ा सरदर्द है। सर्वेक्षणों के मुताबिक अगर आज के दिन चुनाव होते हैं तो हिलरी भारी मतों से जीतेंगी। ट्रंप का रास्ता फिलहाल काफी कठिनाइयों भरा नजर आ रहा है।
ट्रंप के सामने अब क्या रास्ता बचा है, क्या रणनीति हो सकती है उनकी इस तरह के आरोपों से बचने की?
देखें, जब वो वीडियो आया सामने तो ट्रंप थोड़े डिफेंसिव नजर आए थे, लेकिन डिबेट के दौरान वो उन महिलाओं को लेकर आए जिन्होंने हिलरी क्लिंटन के पति बिल क्लिंटन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था 80 और 90 के दशक में, और वो काफी आक्रामक रवैया अपनाया उन्होंने। उसका एक असर ये हुआ कि उनके जो अपने कट्टर समर्थक हैं उनका जोश फिर से काफी बुलंद हुआ, और रिपब्लिकन पार्टी में भी जो कुछ नेता थे उन्होंने अपनी आलोचना कम कर दी। तो अभी जो नए आरोप आए हैं उसके बाद भी ट्रंप वही आक्रामक रवैया अपनाते हुए दिख रहे हैं और बिल क्लिंटन के चरित्र पर हमले कर रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि कोशिश शायद इस बात की हो रही है कि हिलरी क्लिंटन की तरफ जो वोटर अब झुक रहे हैं कि ट्रंप से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो भी उदासीन हो जाएं ये सोचकर कि दोनों ही पक्ष ऐसे ही हैं और वोट डालने ना निकले। और उसका फायदा ट्रंप को हो सकता है क्योंकि उनके जो अपने कट्टर समर्थक हैं जिन्होंने प्राइमरीज में उन्हें जीत दिलाई 17 उम्मीदवारों के खिलाफ, वो तो जरूर बाहर निकलेंगे और तब फिर ट्रंप को उसका और ज्यादा फायदा हो सकता है।
वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। और आइए अब कुछ दूसरी खबरों का रुख करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मुशाहिद हुसैन सैयद को अपना विशेष दूत बनाकर अमरीका भेजा है, जो वहां जाकर कश्मीर के बारे में लोगों से बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक ग्रेटर सार्क यानी वृहत सार्क की चर्चा भी छेड़ी है। सार्क देशों के मुद्दे पर भारत के विरोध से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ने की आशंकाओं के बीच पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। हमारे सहयोगी सलीम रिजवी मुशाहिद हुसैन से न्यूयॉर्क में मिले और उनसे बातचीत की। आइए सुनें कि क्या चर्चा हुई है।
साक का मामला है वो भी बड़ा अहम है, और आपका कुछ बयान था इस सिलसिले में, कोई एक और अलायंस जो है वसीतर हो जो कि साक जैसी शक्ल हो लेकिन और भी ममालिक उसमें शामिल हो, तो ये क्या है?
दो चीज़ें हैं जी। एक तो है कि मोदी साहब ने और हिंदुस्तान ने जिस तरह साक को सेबटाज किया है, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ही इज इफेक्टिवली प्रिजाइडिंग ओवर द स्लो मोशन डेथ ऑफ साक। ये ग्रेटर साउथ एशिया उभर रहा है जिसमें चाइना भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, म्यांमार भी है, ताजिकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, किर्गिजिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान भी है, और इनका ताल्लुक जो है तवानाई के हवाले से, इक्तिसादी ताबुन के हवाले से, पोर्ट्स हैं, पाइपलाइंस हैं, रोड्स हैं, रेल लिंक्स हैं, तो ये उभर रहा है और उसका महवर, उसका सतून चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी है, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये एक नया सिलसिला उभर है और उसके हवाले से जो उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो फिर सार्क नहीं है, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस हवाले से हिंदुस्तान का जो रवैया है कि वो उल्टी गंगा बह रही है। असल जो फोकस है, जो ट्रेंड है इलाके में, वो है इक्तिसादी ताबुन का, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। हिंदुस्तान अमरीका के साथ मिल के लगता है कि वो एक नई सर्द जंग की बुनियाद रख रहा है और ये अफसोसनाक बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि इन पॉलिसियों से हिंदुस्तान तनहा रह जाएगा, क्योंकि ये जो एशियन सदी में फोकस जो है वो तावन का है, तिजारत का है, तवानाई का है, मईशत का है, ना कि जंग की बातें करें। तो इस किस्म का जो रवैया है बालादस्ती का, हेजेमनी का, कि अपनी माइट इज़ राइट का, तो आजकल तो दौर है राइट इज़ माइट, और वही कश्मीरी जो हैं वो इसी के लिए लड़ रहे हैं कि असूली मौकफ है कि राइट इज़ माइट, Not might is right।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष दूत मुशाहिद हुसैन सैयद से बात कर रहे थे सलीम रिजवी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि 3 बार तलाक और अन्य धर्मों में महिला विरोधी गतिविधियों को जानने के लिए विधि आयोग की तरफ से जो प्रश्नावली भेजी गई है वो एक छलावा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो इसका बायकॉट करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी वली रहमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए अच्छा नहीं है, समान आचार संहिता इस देश के लिए अच्छा नहीं है। इस देश में कई संस्कृतियां हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने जोधपुर में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट प्रोफेसर अख्तरुल वासे से पूछा कि मुस्लिम समुदाय को इसमें क्या आपत्ति है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इसलिए आपत्ति व्यक्त कर रहा है क्योंकि जो धार्मिक आजादी है वो हमारा संविधान अपने देश के तमाम रहने वालों को देता है, तो उसके बाद आपके बारे में अगर कोई फैसला करते हैं और वो इसलिए कि खासतौर से एक धर्म विशेष के लोगों को ऐसा लगता है कि उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनकी धार्मिक जो आजादी है उसके ऊपर एक तरह से टारगेट किया जा रहा है।
लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रश्नावली है और जिस तरह से सवाल उठा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्या आप उसे सही मानते हैं?
प्रश्नावली का मसला नहीं है, प्रश्नावली जो है वो इस देश के अंदर और बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन आप जो हैं सिर्फ इसी को क्यों उठा रहे हैं? इस देश का जो पूरी की खूबसूरती है वो किस बात में है? वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है, अनेकता में एकता में है। अभी तक ऐसा होता रहा है कि तमाम धर्म के लोग अपनी अपनी आस्थाओं के अनुसार फैसले करते रहे हैं, जीवन व्यतीत करते रहे हैं और उस पर कोई मसला नहीं हुआ। अगर एक धार्मिक वो है जिसे कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर उससे मामला सही हो जाते और एक तरह का कानून होने से लोग सही सब सही हो जाता तो माफ कीजिएगा, हिंदू धर्म के अंदर जो इख्तलाफात हैं, मतभेद हैं, वो ना देखने को मिलते और इसी तरह मुसलमानों में भी नहीं मिलते।
लेकिन आपको नहीं लगता कि हर जो भी कानून है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं ही, और अगर ये सामान
कमियां
यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है जो
है, मुझे बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह का बनेगा कि क्या होगा? मतलब उसमें ये होगा कि निकाह जो है वो ईसाइयों के तरीके पे होगा, तलाक जो है मुसलमानों के तरीके पे होगी, जो 3 दफे कह दिया और तलाक हो गई बहुत आसान है, और हिंदू धर्म के मुताबिक जो है कि हमें दूसरे वो होंगी, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप जो मुसलमानों के बारे में एक बात हमें मान के चलनी चाहिए, उनकी आस्था है और उस आस्था पर आप कोई प्रश्न चिन्ह लगा सके जिसमें हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो न्याय विधि है वो कुरान पे आधारित है और हदीस पे आधारित है मुख्यतः, इसलिए कुरान और हदीस जो है उसके बारे में हम कोई समझौता नहीं कर सकते।
लेकिन यहाँ सिर्फ मुसलमानों की ही बात नहीं है ना, यहाँ पर सिख समुदाय भी है, जैन समुदाय भी है, जो हिंदू
उसमें ही सुनिए क्या
तो आपको नहीं लगता कि अगर वो एक समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो इससे बराबरी का दर्जा हासिल हो जाएगा और जिस तरह की कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी?
इस तरह से थोड़ी बराबरी होती है, बराबरी जो है वो ये है कि आजादी
नहीं तो अलग अलग रह के भी नहीं, अलग अलग रह के भी अगर आप बोल रहे हैं कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बातें कह रहा है वो जायज हैं, तो कौन सा मुस्लिम महिलाओं का बहुत फायदा हो गया है उससे? अगर आप तलाक की बात कर रहे हैं तो
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की एक प्रतिनिधित्व क्या है और संस्था है, इस पे मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा उनसे हर मामले में सहमत होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, विशेषकर औरतों के सिलसिले में जो 3 तलाक का मामला है मैं उसमें उनसे सहमत नहीं हूँ। ये बहस समाज के अंदर चलनी चाहिए, ये सुधार समाज के अंदर से आना चाहिए, औरतों को जो हक कुरान और हदीस ने दिया है वो मिलना चाहिए, मैं मानता हूँ कि वो पूरी तरह से उन्हें नहीं मिल पाया है।
प्रोफेसर अख्तरुल वासे से बात कर रही थी सुशीला सिंह, और आइए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। पिछले 6 महीने से कुछ बौद्ध भिक्षुओं की अगुवाई में जारी धम्म चेतना यात्रा का आज कानपुर में समापन हो रहा है। यात्रा के समापन के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। वहीं पिछले 1 महीने तक देवरिया से दिल्ली तक की यात्रा लेकर के जो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चले थे उसको शुक्रवार से राहुल संदेश यात्रा के रूप में बदल दिया गया है और 27 अक्टूबर तक राज्य के हर जिले में जाएगी। धम्म चेतना यात्रा यूं तो बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों ने दलित समाज में जागृति फैलाने के मकसद से शुरू की थी, लेकिन इसे बीजेपी प्रायोजित बताया जा रहा है। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
86 वर्षीय बौद्ध भिक्षु भदंत धम्म वीरियो के नेतृत्व में करीब 70 भिक्षुओं ने 24 अप्रैल को सारनाथ से धम्म चेतना यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रवाना किया था। 174 दिनों तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हजारों किलोमीटर घूमने के बाद ये यात्रा आज कानपुर में समाप्त हो रही है। यात्रा के दौरान जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका स्वागत किया और भीड़ जुटाई। कानपुर में भी यही प्रयास जारी है। समापन के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी आ रहे हैं। यात्रा के दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने दलित समुदाय के लोगों को बौद्ध धर्म के अलावा राजनीति की बातें भी बताईं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसका बीजेपी और राजनीति से कोई लेना देना नहीं। इस यात्रा के सूत्रधार बताए जाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह कहते हैं,
पूरी की पूरी जो यात्रा निकली थी वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और जो दलित है, शोषित है, वंचित है, उनका कल्याण हो, मानव कल्याण हो, उसके लिए ये यात्रा निकली थी। जब भी कोई इस प्रकार की यात्रा निकलती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और व्यवस्था में लगते हैं। अब अन्य प्रदेश में भी जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जहां जाएंगे अभिनंदन करेंगे, लेकिन तय तो उनका करना है क्योंकि यात्रा तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, धम्म चेतना यात्रा तो डॉक्टर धम्म वीरू जी की है।
दरअसल बीजेपी इस यात्रा के जरिए उन दलितों को अपने साथ जोड़ना चाहती है जो कि बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं या उसकी ओर उनका झुकाव है। यात्रा का नेतृत्व करने वाले धम्म वीरियो वर्षों तक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम के करीबी रहे। ऐसे में जब वो बीएसपी की कथित दलित विरोधी नीतियों और बीजेपी की दलित समर्थक नीतियों के बारे में बताएंगे तो बहुजन समाज पार्टी का दलित मतदाता बीजेपी की ओर आकर्षित होगा, ऐसा शायद बीजेपी का मानना है। लेकिन जानकार इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं,
बहुत ही मैच्योर टैक्टिक्स है और ये अमित शाह एक्चुअली कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा काबिल समझने लगे हैं। इनके पास दो ही स्ट्रैटेजीज नजर आती हैं, एक तो पोलराइजेशन, दूसरा इनको ये लगी हुई है कि मैं दलितों को तोड़ लूंगा और वो होता मुझे दिखता नहीं क्योंकि इतनी शैलो किस्म की पॉलिसीज है कि कोई ऐसी चीज थोड़ी ना कि बटन दबाया और हो गया ओवरनाइट कि चार आदमी उन्होंने खरीद लिए। उनके मायावती की जो भी रैली हुई थी, जिस तरीके की रैली थी वो उतनी बड़ी रैली मायावती की खुद की भी नहीं हुई इससे पहले। उन्होंने ये भी प्रूव किया है कि जितने आदमी जो तोड़े इन्होंने बीएसपी के, उनके जाने से मायावती की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निकली इस यात्रा में जगह जगह बीजेपी के कई शीर्ष नेता, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। वहीं यात्रा में लगातार चल रहे बौद्ध भिक्षु भदंत शांति मित्र ने बीबीसी के साथ बातचीत में दावा किया कि इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी हृदय परिवर्तन किया, ठीक उसी तरह जैसे कि महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल का किया था।
हम उसको हमने मानते हैं कि जैसे अंगुलीमाल का जो प्रश्न है, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी हमारे विचारों के अंगुलीमाल है और अब हम उसको बदल रही है। जैसे बुद्ध ने बदल लिया और भिक्षु बना लिया, वैसे हम लोगों ने मनवादी जो हमको कहते थे गलत है, अछूत है, दलित है, तमाम बातें कहते थे, अब वो हमारे साथ आ गए। अब जब उसका अध्यक्ष भी आ गया तो हमारे लिए ये हो गया कि और बड़ा परिवर्तन आ गया।
अब इस हृदय परिवर्तन का क्या मतलब है और ये कैसे हुआ, इसे तो बीजेपी और बौद्ध भिक्षु ही बता सकते हैं। लेकिन जिनका हृदय परिवर्तन कराने ये लोग निकले थे, उनका हृदय परिवर्तित हुआ या नहीं, ये चुनाव बाद पता चल जाएगा। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और आइए अब जरा नजर डालते हैं दिल्ली के अखबारों में आज क्या कुछ छपा है। अमर शर्मा आ चुके हैं अखबारों के साथ। जी अमर
जी। निखिल, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने अपनी पहली खबर 4 कॉलम में छापी है और लिखा है कि अमरीका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो घोषित आतंकवादी हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करे। और वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी दूसरी खबर बनाया है कि 7 IIT को अपने संस्थान के फीस निर्धारण में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। अभी फीस का निर्धारण IIT परिषद करती है जिसकी अध्यक्षता मानव संसाधन मंत्री करते हैं। मौजूदा समय में हर IIT एक छात्र से 2 लाख रुपए की फीस लेती है और जबकि प्रत्येक छात्र पर 6 लाख रुपए का खर्च आता है। और सरकार ने विश्वजीत नाम की एक योजना अगस्त में शुरू की थी जिसके तहत 2018 तक IIT को 500 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड जमा करना है, इसलिए वो फीस बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने लिखा है कि पुरानी दिल्ली के व्यापारियों का कहना है कि चीनी सामानों के बहिष्कार के अभियान के कारण दिवाली की बिक्री पर असर पड़ रहा है। उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान को चीन के समर्थन के बाद सोशल मीडिया पर चीनी सामानों के बहिष्कार का अभियान चलाया गया था। 3 तलाक और सामान्य नागरिक संहिता पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है, ऐसा ये हिंदी के सभी अखबारों में और अंग्रेजी के अखबारों में भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा गया है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने इसे अपनी पहली खबर बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि मुस्लिम संगठनों का कहना है कि समान नागरिक संहिता पर सर्वे कराना धार्मिक अधिकारों के खिलाफ युद्ध है। वहीं दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को 4 कॉलम में छापा है और इसे अपनी पहली खबर बनाई है। अखबार ने हेडलाइन दी है कि बॉर्डर संभल नहीं रहा, देश में मुस्लिमों के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं मोदी रहमानी। ये बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद वली रहमानी का कथन है जो अखबार ने छापा है। वहीं आपको बताएं कि अमर उजाला ने एक दूसरी खबर बनाई है इसके अलावा कि सीबीआई ने शुरू की जाट आंदोलन हिंसा की जांच और 3 FIR दर्ज की गई है। ये थी प्रमुख
जी। अमर शर्मा बहुत शुक्रिया अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के सतारा में हुए एक साहित्यिक सम्मेलन में दो दलित लेखकों ने जब शिवाजी की जाति पर टिप्पणी की तो पुरजोर विरोध होने की वजह से उन्हें सम्मेलन ही छोड़ना पड़ा। शिवाजी की जाति पर विवाद कई बार पैदा हुआ है जिसके चलते कई लेखकों और किताबों को विरोध का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे पर इतिहासकारों की क्या राय है ये जानने के लिए हमारी संवाददाता बीबीसी की दिव्या आर्य ने महाराष्ट्र में दो इतिहासकारों से बात की है।
बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित महाराष्ट्र साहित्य परिषद के आयोजन में दलित लेखक प्रदन्या पवार और राव साहब कास्बे ने जातिगत भेदभाव और मराठा समुदाय के अलावा छत्रपति शिवाजी की जाति पर भी टिप्पणी की और दशकों पुराना मूल सवाल फिर उठ खड़ा हुआ, क्या शिवाजी शूद्र जाति के थे? इतिहासकारों ने इस सवाल के जवाब अलग अलग तरीके से समझे हैं।
जो हायरार्की है हिंदू समाज की उसके अंदर मराठा शूद्र ही माने जाते हैं, आजकल जिसको हम ओबीसी बोलते हैं।
पुणे में रहने वाले इतिहासकार और इस्लाम के साहित्यकार प्रोफेसर अब्दुल कादिर मुकादम के मुताबिक मराठा समुदाय शूद्र जाति ही माना जाता था और उसे क्षत्रिय का दर्जा शिवाजी ने ही दिलाया। मुकादम के मुताबिक शिवाजी के दौर में मराठा प्रभुत्वशाली समुदाय था लेकिन ज्यादातर लोग निजामशाही में काम करते थे, किसी ने राजा बनने की कोशिश नहीं की थी। और जब शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ अपना स्वतंत्र राज्य निर्माण किया तो उनके लिए ये जरूरी था कि हिंदू परंपरा के मुताबिक उनका राज्याभिषेक हो और लोगों से मान सम्मान के अलावा उनकी राजशाही को भी धार्मिक मान्यता मिले।
छत्रपति शिवाजी जो थे उन्होंने सीधे काशी के एक गागाभट्ट नाम के ब्राह्मण को बुला लिया, उनको ये कहा कि भाई मुझे राज्याभिषेक करने का है, ये राज्याभिषेक कैसा हो सकता है, इसका रास्ता मुझे निकाल के दे दो। अब उन्होंने क्या किया कि जो राजस्थान के कुछ फैमिलीज है, वेल फेमस फैमिलीज जो क्षत्रिय और वॉरियर्स इसके अंदर बहुत माहिर थे और बहुत प्रसिद्ध थे, उसमें से सिसोदिया फैमिली को उन्होंने चूज किया। उन्होंने ऐसा यहाँ के ब्राह्मण को बताया कि ही बिलोंग्स टू दैट क्षत्रिय फैमिली।
मुकादम के मुताबिक धर्म के अनुसार राजा बनने का अधिकार उस दौर में सिर्फ क्षत्रियों को था। ऐसे में शिवाजी की कोशिश थी कि जाति प्रथा की इस व्यवस्था से निकला जाए।
पहले ऐसा नहीं था, बाद में हो गया। सब शूद्र होते थे राजे, ब्राह्मण होते थे राजे, क्षत्रिय लोग पढ़ते थे, ऋग्वेद में वेद लिखे हैं क्षत्रिय लोगों ने, ये पहले बहुत पहले जमाने में कोई भी नहीं था।
महाराष्ट्र के ही नांदेड़ के प्रोफेसर शेषराव मोरे भी मानते हैं कि शिवाजी राजस्थान के क्षत्रिय परिवार के वंशज थे, हालांकि वो इसके लिए गागाभट्ट के इस्तेमाल की बात की तस्दीक नहीं करते। उनके मुताबिक भारत में हिंदू धर्म के लोगों में वर्ण को पहले व्यवसाय के तौर पर बांटा गया, पर बाद में धर्मशास्त्र में दो ही वर्ण माने गए, एक ब्राह्मण और बाकी सब शूद्र। मोरे कहते हैं इसके पीछे कुछ पुराणों में बताया गया एक मिथक था।
परशुराम और क्षत्रियों का झगड़ा हो गया और वो झगड़े में सब क्षत्रिय सब मारे गए, उसको जो विधवा बच गए वो ऋषि मुनि के साथ संबंध आने के उसके पास जो प्रजा हो गए सब शूद्र प्रजा है, इसीलिए शिवाजी महाराज शूद्र, सब शूद्र ब्राह्मण छोड़ के सब शूद्र थे ऐसा कहना था, इसीलिए शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने को देते नहीं थे वो।
1857 की लड़ाई और वीर सावरकर के इतिहास पर लिखने वाले मोरे के मुताबिक शिवाजी महाराज की जाति क्षत्रिय ही है क्योंकि उनका घराना राजा का घराना था और उनकी पीढ़ियां लड़ाई के कौशल में माहिर थीं। इस एक विषय पर मुकादम उनसे इत्तफाक रखते हैं और कहते हैं कि कर्म कौशल और ज्ञान के संदर्भ में शिवाजी को क्षत्रिय जाति का ही मानना चाहिए। दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया है। उत्तरी सीरिया में तुर्की की सीमा के नजदीक एक कार बम धमाके में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के नवनियुक्त महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने चेतावनी दी है कि दुनिया एक खतरनाक समय से गुजर रही है। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति येमी ओसिनबाजो ने स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि अपहरण की गई 21 स्कूली लड़कियों को कैदियों की रिहाई के बदले में छोड़ा गया है। थाईलैंड के किंग पूमिपोन अद्युंदेत के निधन के बाद पूरे देश में शोक मनाया जा रहा है। अद्युंदेत दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सम्राट थे। थाईलैंड का राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया गया है और सभी घरेलू टेलीविजन में किंग के जीवन पर आधारित फिल्में दिखाई जा रही हैं। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया अमर शर्मा ने और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं राजेश चौहान। आपसे एक घंटे बाद विश्व भारती में फिर मुलाकात होगी। निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।